आज आप देखिए कि इसको एक पूरा फन बना दिया गया, पेशा है। आज मीडिया को देख लीजिए, लोगों से बात करना, फने तकरीर और कुछ, ये लोगों ने प्रोफेशनली अब पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल जो होता है ना, जिसके ज़रिए आप अपने जज्बात, एहसासात, अपने ख्यालात, अपनी मालूमात दूसरों को पहुंचाते हैं, ये कितना कीमती रिसोर्स है। कोई लीडर आए और स्पीच करे और उसको बोलना ही नहीं आ रहा, तो लोग उसको लीडर मानेंगे। कोई टीचर आए पढ़ाने और उसके अल्फाज ही दुरुस्त नहीं है, तो लोग उससे सीखेंगे। कोई वोट मांगने आए और बात ही ना करनी आए, तो क्या लोग उसको वोट देंगे? कोई आपसे खाना मांगे और उसको खाना मांगना नहीं आ रहा, तो क्या आप उसको खाना देंगे? आप आजमा के देखें, जुबान और बोलना और कुव्वते गोयाई इतनी बड़ी दौलत है कि ज़िंदगी में कामयाबी की दलील है। जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं, पहले वो स्पीचेस करते हैं, शायद आपको पता है कि नहीं, ये जितने लोग बड़े बड़े मुल्कों के या आम मुल्कों के सदर और वजीर बनते हैं, इनको फिर नॉमिनेट करने से पहले या इसके बाद फिर ये सिखाते हैं कि सदर साहब ने तकरीर करनी है जब टीवी पे, तो कैसे करनी है, आओ सिखाओ। लोग तो हंसेंगे कि सदर साहब बोले भी तो क्या बोले, इतनी बड़ी बात है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुल लिन्नासि हुस्ना, लोगों से हुसन की बात करो, अच्छी बात करो। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि अपना माफी उस ज़मीर बयान करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करना, दूसरों तक वो बात पहुंचानी, ये काट है। क्या वजह है कि कोई बात करे तो कोई सुनने को तैयार ना हो, और कोई बात करे तो लोग छोड़ने को तैयार ना हो? ऐसा होता है कि नहीं? आपके अपने बच्चों में ऐसे होंगे, एक बच्चा बोलता है तो आप बड़े प्यार से सुनती हो, और दूसरा बोलता है आप कहते जल्दी बोलो, बात तो जल्दी करो, तुम्हें बात करनी नहीं आती। ऐसे ही है ना, गोया कि आप कह सकते हैं कि बोलना एक नेमत है, और इसी बोलने से दुनिया का सबसे अहसन काम लिया जाता है। अल्लाह ताला सूरत हामीम सजदा में फरमाते हैं, वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि वअमिला सालिहन, उससे भी कोई अच्छा होगा कि जो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए। दाई दीन है, वो मुबल्लिग है, और ख़ुद भी वो अमल करता है और ख़ुद को मुसलमान कहता है, इससे भी कोई अच्छा काम करेगा? तो ये अमर बिल मारूफ और ये तबलीग का काम कैसे होता है? ज़ुबान से होता है ना। तो हमारा बोलने का स्टाइल, हमारी बात करने का तरीका लोगों को हमारा दोस्त भी बना देता है और हमारा दुश्मन भी बना देता है। एक तो होती है ना ज़ुबान, टंग, वो और चीज़ है, एक है कौल। कौल फ़र्क है। आप देखिए ना लफ्ज़ कुल, कुरान पाक में बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ आता है ना, कुल, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, बोलो, उसी से लफ्ज़ है कुलू, तुम बोलो, सब बात करो। तो कौल क्या है? कौल क्या है? इंसान को दिया हुआ एक शर्फ है जो अल्लाह ने अता किया, खलक अल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को पैदा किया और उसको बोलना सिखाया। सूरत अर-रहमान की आयत नंबर 3 और 4 है। जब हम बोलते हैं ना, तो हवा में लहरें इधर उधर होती हैं, ये सिर्फ लहरों को हिलाने का नाम नहीं है, हकीकत में कुव्वते बयान क्या है? लोगों के बीच में राब्ते का ज़रिया। आप कहते हैं ज़राए अबलाग, मीडिया को क्या कहते हैं उर्दू में? ज़राए अबलाग। ये मीडिया क्या है? कभी आपने गूंगा टीवी देखा, गूंगा रेडियो सुना, कभी गूंगा नेट देखा? तस्वीर आए ना आए, आवाज़ आती रहे, लोग सुनते रहते हैं, कितनी देर सिर्फ तस्वीरों को हिलता देखेंगे? तो गोया कि आप कह सकते हैं कि आज हमें अपने कुव्वते बयान पे बात करनी है। इंसान जब अच्छे लफ्ज़ बोलता है ना, तो लोगों के दिल में उतरती हैं। आप सोचिए कि जब ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकलता है, वो क्या है? एक गवाही है। लफ्ज़ क्या है? एक बोला हुआ लफ्ज़ आपका दूसरों के दिल पे अनमिट निशान छोड़ देता है। आप ये कह सकती हैं कि दिलों पे दस्तक देने वाली चीज़ आपके मेरे अल्फाज हैं, बंद दिलों को के ताले खोलने वाली चीज़ हमारा कौल है। और ये बातें ही तो होती हैं जो कभी किसी को हंसाती हैं, तो किसी को रुलाती हैं, तो किसी को उम्मीदें दिलाती हैं, तो किसी को मायूस कर देती हैं। ये लफ्ज़ ही तो होते हैं जो दूसरों के दिलों में अज़ायम बेदार करते हैं, और किसी को इज़्ज़त देते हैं और किसी को नीचे गिरा देते हैं। और ये बातें ही होती हैं जो किसी को थपक थपक के लोरियों की सूरत में सुला देती हैं। माएँ बच्चों को जो लोरी देती हैं, वो भी तो लफ्ज़ ही होते हैं ना। तो आप अहमियत का एहसास करके देखिए, ये कितनी बड़ी चीज़ है कि ये लफ्ज़ इंसान को असफल उसाफिलीन में भी गिरा देते हैं और आला दर्जात में भी ले जाते हैं। और हत्ता के अल्लाह के नबी की एक हदीस कि इंसान की ज़ुबान से सिर्फ एक कलेमा निकलता है और उसको ख़ुद भी नहीं पता कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसकी वजह से या तो वो जन्नत के करीब कर दिया जाता, जन्नत में पहुंच जाएगा, और एक लफ्ज़ कभी ऐसा भी बोलता है जो उसको जहन्नम में गिरा देगा। वल्ला ही एक लफ्ज़ मुझे और आपको जन्नत या जहन्नम के काबिल कर देता है। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि ये कौल इंसान को जन्नत या जहन्नम दोनों दिलाएगा। आप कहते हैं कि कौल बोले जाते हैं? नहीं, ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, ये कलाम भी है, ये तहरीर भी है, ये बोल के भी की जाती है, लिखी भी जाती है, ये पढ़ी भी जाती है, ये एक पैगाम की सूरत में भी है। आप नोट करके देखें, एक 24 घंटे अपनी ज़िंदगी के, उसमें 8 घंटे सोने के निकाल दें। वैसे तो कुछ माएँ और कुछ औरतें नींद में भी बोलती हैं, मैंने सुना, हम तो उसमें भी चुप नहीं करते, लेकिन चले हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि औरतें नींद में नहीं बोलती। तो फिर आप 24 घंटों में 8 घंटे भी बहुत सो लें, तो पीछे कितने बच गए? 16 घंटे। 16 घंटे मेरे साथ जो कुछ हो रहा होता है, ये मेरे अल्फाज की वजह से हो रहा होता है। बच्चों से, माँ से, बाप से, शौहर से, बहू से, सास से, नौकरानी से, बाहर से आने वालों से, मैं कैसे बोलूँ, क्या करती हूँ, हम में से हर एक को इसको नज़र में रखना है। ये बहुत कीमती बात है। देखिए, हम सब अपने ऊपर देखें, ये लफ्ज़ इनकलाब बर्पा कर देते हैं। ये लफ्ज़ों की लगाई हुई आग जो होती है, बाज़ दफ़ा ख़ानदानों को अलग कर देती है। एक लफ्ज़ शौहर के मुँह से निकलता है ना, जा तुझे तलाक देता हूँ, तो शौहर बीवी अलग हो जाते हैं। और ये भी एक कौल ही है कि कबूल है, कबूल है, तो वो एक गैर औरत एक मर्द की बीवी बन के उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। इतने अहम है ये लफ्ज़ जो मैं बोलती हूँ ना, ये मेरी पहचान है। और हमारे बोलने के अंदाज से पता चलता है कि अंदर तकब्बुर भरा हुआ है या आजजी है या मस्कीनी है, या खुद बड़े बने हुए हैं या दूसरों को बना रहे हैं। लोग कहते हैं कैसे पता चलता है क्या सोचते हैं? आपके बोलने के तरीके से पता चलता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप कितने खुद पसंद हैं आपके बोलने से पता चलेगा। आपके अंदर कितनी आजजी है, कभी किसी ने किसी का दिल खोल के देखा आज तक? नहीं देखा ना। अंदर से पता चलता है हमें, आपके बोलने से पता चलता है। कुछ लोग कितने हम्बल होते हैं, कितना सुकून है उनके अंदर, कितना तहम्मुल है। कहाँ से आता है? अंदर से निकलता है। चश्मे से जो पानी निकलता है वही बाहर आता है। तो अंदर की इसलाह करेंगे तो बाहर की होगी, याद रखें। बस लोग कहते हैं ऊपर से मीठी मीठी बातें करो, वो तो और चापलूसी लगेगी, वो तो और ज़्यादा आप कह लीजिए कि डिप्लोमेटिक बातें लगेंगी, वो तो बिल्कुल खुशामत लगेगी। तो बात का खुलासा क्या है कि अगर हम अपने अल्फाज खूबसूरत करना चाहते हैं ना, तो हमें अपना दिल खूबसूरत करना पड़ेगा। अंदर की इसलाह करेंगे तो बाहर की होगी। सच्ची बात कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, ये सब कुछ इंशाल्लाह हमें पता चलेगा। अगर आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही छोड़ दूँ ना, क्योंकि ये टॉपिक आगे चलेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन आप महसूस करेंगे कि हम सब अपने अल्फाज की कीमत अदा करते हैं। बहुत बोलने की आदत होती है ना, तो ज़िंदगी में फिर उसकी वजह से रुसवाई होती है। आज छोटा सा एक काम आपको दे के फारिग करती हूँ, फिर इंशाल्लाह जब दोबारा कभी मिलेंगे और सुनेंगे तो फिर देखिएगा कि आप सब ने आज एक काम करना है। पहली बात है कि अगर अपनी इस्लाह चाहते हैं तो फिर ही ये काम करेंगे, वरना नहीं। अगर आप 100% सेटिस्फाइड है ना कि मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ, मैं बहुत हूँ, मेरे जैसा तो कोई बोलता ही नहीं है, तो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि कलाम की बुराइयाँ ये चलेंगी, ये सीरीज़ इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। बहुत बोलना भी कलाम का नक्स है, गुनगुन करके बोलना भी नक्स है, अकड़ के साथ बोलना भी है, तहकुमाना अंदाज से बोलना भी एक बुराई है, दूसरे की सुनना ना ये भी है, अकड़ के साथ जिसको कहना चाहिए हर धर्मी से बोलना ये भी बहुत बात है। तो आपने क्या करना है, खुद एहतसाबी, आप खुद सोचें मैं कैसे बोलती हूँ, मेरे बोलने का तरीका क्या है। फिर उससे भी कठिन सवाल अपने करीबियों से पूछें। घर में अमूमन कौन होते हैं? मैरिड हैं अगर आप, तो बच्चे और शौहर, सास। अमूमी घरों में ये चार रिश्ते तो होते ही हैं ना, क्योंकि आपकी उम्र में औरतें अमूमन मैरिड ही होती हैं, और जो अनमैरिड है वो अपने घर वालों में बहनों भाइयों से और माँ बाप से पूछें। लेकिन एक औसत दर्जे की औरत जो है वो किससे पूछे? नंबर एक आप अपने शौहर से पूछे, आप बताएं मैं कैसे बोलती हूँ। कितनी सिस्टर्स जुरत करती हैं इस बात की कि मैं अपने शौहर से ये पूछ सकती हूँ कि आप बताएं कि मैं आपसे कैसे बोलती हूँ। कितनी माएँ अपने बच्चों से ये सर्टिफिकेट लेके आ सकती हैं कि अम्मी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप तो कभी चीखी नहीं, आप तो कभी चिल्लाई नहीं, आप तो कभी शाउट ही नहीं करती। जी घर में फेल हो गए तो बाहर किधर जाएंगे? और वल्ला ही कभी आप अपनी बेतकल्लुफ दोस्तों से तो पूछें कि सुनाओ पार्टी और महफिलों में मैं चीखती कैसे हूँ। बस लोगों का दिल करता है सब चुप मैं बोलूँगी, सब गूंगे हो जाओ मैं बोलूँगी। ये कलाम का नक्श है। याद रखिए इंसान की पर्सनैलिटी राख हो जाती है जब वो खूबसूरत तरीके से बात नहीं करता। आप अपना दिल अच्छा करें, आपके अंदर ये सारी चीज़ें अगर आ गई हैं ना जो हमने जिक्र की है, बंदगी का रंग है, अपने ना होने का एहसास है, माँ बाप के आगे वला तन्हर हुमा झिड़को नहीं उफ ना कहो, तो आपके अंदर बातों का हुसन आ गया। रिश्तेदारों से वो ही निभाएगा जिसकी कुलुल नासे हुस्ना पे बात होगी। कोई एक सुनाए आप कहते मैं खरी खरी सुनाऊंगी, मैं चार सुनाऊंगी, पहले मेरी सुन लो। अच्छा बात सिर्फ हम अपनी बात सुना के बड़े सच्चे हो जाते हैं, बस सच्चे हो गए, बड़े नेक हो गए हैं, बाद में पता चला आपने बात तो नहीं लेकिन आपने अपना सारा इमेज ही लूज़ कर दिया। बस जब हम अपनी सफाई पेश करने में इतने भोंडे तरीके से बात कर रहे होते हैं, अगर आईना देख रहे हो तो हम खुद से डरते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ कर लीजिए, अब ये सब दूसरों से पूछना तो जानलेवा है, पानी पास रख के पूछिएगा, लेकिन आप खुद से तो पूछ सकते हैं। देखिए क्या आप कह सकती हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता अच्छे लफ्ज़ क्या होते हैं बुरे क्या होते हैं? क्या आप 10 लोगों से मिली आज तक ज़िंदगी में, और हम तो सैकड़ों से मिलते हैं, हमें नहीं पता कौन अच्छा बोलता है कौन अच्छा नहीं बोलता। कई आपके ख़ानदान की ऐसी सिस्टर्स होंगी आप उनके बारे में कहती हैं वो तो बहुत नाइस है, वो बहुत अच्छा बोलती हैं। आप क्या करें, किसी को भी कह दें, क्योंकि खुद करेंगी तो कॉन्शियस हो जाएंगी, बच्चों को घर को, कि आम जिंदगी में जब मैं घर में होती ना तो मेरी रिकॉर्डिंग करो और आप वो रिकॉर्डिंग अकेले में बैठ के खुद सुने। यकीन करें रंग उड़ जाएगा जिस तरह हम चीखते हैं घरों में, और इतने मासूम बच्चों पे जो हम चीखते हैं, ये तो उनके मासूम दिल धक धक करके पता नहीं कितनी उनकी वाइब्रेशन होती होगी अंदर जो हम चीख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद अपना करें, इसका क्या नतीजा निकला फिर इसको लिखें और उसकी रोशनी में इस्लाह करें। अल्लाह से दुआ यह है कि वो हम सब पे अपना रहम करें। 3 सवाल पूछ लें कोई अहम जो मौजू से मुतल्लिक हो, तो इंशाल्लाह फिर हम यहीं रुकेंगे। कोई बहुत काम की बात जो किसी दूसरे को भी फायदा दे। जी आप बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है बहन। जी मैं आपका सवाल, देखिए नमाज पढ़ते हैं खुशू नहीं है, वजह क्या है कि नमाज में क्या करते हैं ये पता ही नहीं है। बात वाजे, इस पे मैं आपको एक लेक्चर रेकमेंड कर सकती हूँ, हम वेबसाइट पे मौजूद है और दावा सीडीज में भी बहुत दफ़ा बना। उसका नाम क्या है, जन्नत के वारिस, सूरत अल मोमिनून की जो इब्तदाई 10 आयतें ना उसके ऊपर वो लेक्चर है। तो उसमें फ़ी सलातिम खाशियून है, तो उसमें 10-12 टिप्स दी हुई हैं कि नमाज में खुशू कैसे पैदा करें। मसलन एक दो मैं आपके लिए अभी भी बताती हूँ, क्योंकि आपने सवाल पूछा है कि मसलन वक्त से पहले तैयार हो नमाज के लिए, फिसलने वाला दुपट्टा ना लें, बिल्कुल फ़ोन सुनने के बाद या लोगों से बात करते ही जाए नमाज पे ना आ जाएँ, थोड़ा सा टाइम लें, इस तरह की और बहुत सारी टिप्स हैं। तो आप उसको सुनेंगी इंशाल्लाह ताला आपको मिलेगा। और वो लेक्चर मिलेगा कहाँ से, मेरा ख्याल है आप साथियों को वेबसाइट का पता होगा। वो भी इसीलिए होता है, इन सिस्टर का सवाल बहुत अच्छा है कि बाद जब हम नमाज में अपनी रकतें भूल जाते हैं तो उसकी वजह ये कि हमें समझ नहीं आता, हम पता नहीं एक ही सूरत पढ़ रहे थे दूसरी पढ़ रहे थे। तो उसके 2-3 तरीके, उसमें एक तो ये कर लें कि जो सूरत पढ़ते हैं ना उसको याद रखें, जो सूरत पढ़ी है एक पहली में ये पढ़ी है दूसरी में ये पढ़ी है, फिर दूसरी बात है कि आप उसमें अपनी तवज्जो रखें कि मैं क्या कह रही हूँ, और इंशाल्लाह जितनी आपकी तवज्जो उसके अंदर होगी उतना आपको याद रहेगा। अब आप देखिए कि ये सारी बातों के बाद जो बात काम की है वो क्या है, कि अभी तो हमने कुरान की एक आयत सिर्फ समझी है, समझनी शुरू की है। जब ये कुरान हमें पूरा समझ आ जाता है तो हमारे अंदर क्या चेंज आ जानी चाहिए, बहुत बड़ी चेंज आनी चाहिए ना। आइए छोटी सी दुआ कर लेते हैं और अल्लाह से मदद मांगते हैं। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मालिक, या कुद्दूस, हम सबको माफ़ फरमा, कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे. या अल्लाह, हमने जिन अहकामात के बारे में आज पढ़ा, हर एक पे हमें अमल की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह, हमें बंदगी के रंग में रंग दे. और या अल्लाह, हमें अपने माँ बाप का भी कदरदान बना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला बना, यतीमों और मिसकिनों का ख्याल रखने वाला बना. हमें या अल्लाह अच्छी बात करने वाला बना. या अल्लाह, हमें बेहतरीन बात करने वाला बना. या अल्लाह, हमारी ज़ुबान की और हमारे बोलने के अंदाज़ की और हमारे हर लहजे की सलाह फरमा दे. या अल्लाह, शायद हमारा बोलना ही हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट है. शायद हमारे इर्द गिर्द जो हमारे घर में, ख़ानदानों में हमारे झगड़े हैं, उसकी वजह हमारे बोलने का तरीक़ाकार है. या अल्लाह, शायद हम अपने ही साथियों के साथ जो चला नहीं सकते अपने मामले को, उसकी वजह हमारा ज़्यादा बोलना और गलत बोलना है. या अल्लाह, हमें इसकी इस्लाह की तौफीक दे. या अल्लाह, हमें अपने बोलों को तोलने की तौफीक अता फरमा. और या अल्लाह, हमें नमाजों की पुख्तगी दे दे, खुशी और खुदू अता फरमा, ज़कात अदा करने वाला बना, तेरे रास्ते में दिल खोल कर माल खर्च करने वाला बना. या अल्लाह, यहाँ अभी जिन साथियों ने बैठ के सुना और हमारी इस बहन ने जो अपना घर खोला और जिन्होंने भी इसमें कोशिश की, इहतमाम किया, उन सब की या अल्लाह इस कोशिश को कबूल फरमा. और या अल्लाह, दिलों की नेक हाजात पूरी फरमा. या अल्लाह, हमारी इस बहन के बच्चों को इनकी आंखों की ठंडक बना, इनके शौहर के लिए इनको सदका जारिया बना. या अल्लाह, उनकी मगफरत फरमा. अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू वाफ़िही वाफ़ु अन्हु वक्रिम नुज़ुलहू ववस्सि मुदखलहू वअब्दिल खुदारन खैरम मिन दारहू वअहलन खैरम मिन अहलहू وزوجن خير من زوجه وادخل خل جنہ وائس ہو من عذاب النار. یا اللہ, ہمیں جو تُنہیں نعمتیں دی ہیں وہ تیرے ہی راستے میں استعمال ہوں. یا اللہ, تیری نافرمانی میں استعمال نہ ہو. یا اللہ, سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور یا اللہ, ان کی بہترین تربیت کی توفیق دے. یا اللہ, ان کا حق ادا کرنے والے بنے. یا اللہ, شوہر بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے. یا اللہ, جو بہنیں پریشان ہیں اپنے شوہروں کے معاملے میں, ان کے معاملے کو آسان کر دے. اور جو شوہر اپنی بیویوں کی طرف سے پریشان ہے, ان کو بھی یا اللہ آسودگی عطا فرما. اور یا اللہ, تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ, اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا. یا اللہ, ابھی جس قرآن پاک کی کلاس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, یا اللہ اس میں برکت دے. یا اللہ, اگر ہم نہیں آئیں گے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا, ہم نہیں سیکھیں گے کسی کا کچھ نہیں جائے گا. یا اللہ, ہمیں محروم ہونے والوں میں نہ رکھنا. یا اللہ, ہمیں دوسروں کو بھی بتا کر ان کی نیکیوں میں شامل ہونے والا بنا دے. یا اللہ, آج کا یہ سننا ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لانے کا ذریعہ بن جائے. یا اللہ, تو ہم سب پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ, ہمارے فوت شدگان کو بخش دے. جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہماری بخشش فرمانا. موت کے وقت کلمہ زبان پہ جاری کرنا. یا اللہ, ہماری صغیرہ کبیرہ غلطیاں, خطائیں, گناہوں کو معاف فرما. دنیا میں پردے ڈال دیا, آگے بھی پردے ڈال دے. ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما. یا اللہ, جو دنیا میں ان کی زندگیاں آسانی اور آسودگی والی بنا, اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ, تو ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. اور یا اللہ, ہمیں ہر چیز سے بے نیاز کر دے. جس بہن کے دل میں جو بھی خواہش ہے, اپنی رحمت سے پوری فرما. اور یا اللہ, ہمیں ہدایت کی دولت سے محروم نہ کرنا. یا اللہ, ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما, اور ہمارے دینی ساتھیوں پہ اپنی رحم فرما, جو جہاں بھی اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے اس کام کو کر رہا. یا اللہ, تو ان کے کاموں کو آسان کر دے. اور یا اللہ, تو ہم سب کو توفیق دے کہ تیری دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا کر کے تیرے پاس آئیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. سمع.